हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। स्टर्लिंग रिजॉर्ट, माउंट आबू। ये रिजॉर्ट शादियों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन माना जाता है। आज यहाँ गुजरात के नामी निमानी परिवार के दोनों बेटों की शादी सिरोही के मध्यम वर्गीय सहगल परिवार की दो बेटियों के साथ हो रही थी। रिजॉर्ट को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन कुछ चेहरों पर मुस्कान की कमी साफ नजर आ रही थी। मंडप में पंडित जी के मंत्रों उच्चारण की गूंज थी। निमानी परिवार के दोनों बेटे दूल्हे बने बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे। बड़े बेटे वेदांत निमानी को दुल्हन पसंद नहीं थी, जबकि छोटे बेटे रुहान को शादी करने में ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही देर में दोनों दुल्हनें भी मंडप में आ चुकी थीं। वेदांत के लिए सहगल परिवार की छोटी बेटी विहा को चुना गया था। 20 वर्षीय विहा स्वभाव से बेहद चंचल और नटखट थी। उसकी इन हरकतों को देखकर वेदांत ने उसे अपने छोटे भाई की दुल्हन के लिए भी नामंजूर कर दिया था। उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो अपने भाई के लिए भी पसंद नहीं करता, उसी से एक दिन उसकी शादी हो जाएगी। विहा जैसे ही वेदांत के पास बैठी, उसने जल्दी से चेहरा घुमाकर उसे देखने की कोशिश की। उसकी इस बचकानी हरकत को देखकर वेदांत ने मुठ्ठियाँ कस लीं और मन ही मन कहा, शादी तो कर लो, लेकिन तुम्हें सुधार न दिया तो मेरा नाम वेदांत निमानी नहीं। वहीं रुहान, जो इस शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था, उसने गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, मैडम जी, मेरे पास बैठने में कितना वक्त लगेगा? अनाही का लहंगा हैवी होने के कारण सेट नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसे रुहान के पास बैठने में थोड़ा वक्त लग रहा था। जैसे ही वो बैठी, उसने गहरी सांस ली और मन में सोचा, जैसे विहा थोड़ी नादान है, शायद निमानी परिवार का छोटा बेटा भी वैसा ही है। मैं इस शादी की शुरुआत किसी बहस से नहीं करना चाहती। इतना सोचकर उसने रुहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रुहान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आप मुझसे 3 साल बड़ी हैं, तो क्या अब रोब दिखाएंगी? मुझे नज़रअंदाज की बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। पंडित जी दोनों जोड़ों को घूल रहे थे, क्योंकि उनकी खुसुरपुसर से मंत्रोच्चारण में दिक्कत हो रही थी। अनाही ने पंडित जी की नज़रें देखते ही रुहान से धीरे से कहा, मैं आपको नज़रअंदाज नहीं कर रही, लेकिन ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी हम मंडप में हैं, गपशप करने के लिए नहीं। रुहान ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए मन में कहा, मैडम, क्या बोला इन्होंने, तो लेक्चर देना भी शुरू कर दिया। देखता हूँ ये लेक्चरबाजी कब तक चलती है। जल्द ही इनकी ये नौकरी छुड़वा कर डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाऊंगा। मेरी जिंदगी की डोर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, न घर वाले कर पाए, न तुम कर पाओगी। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और अनाही को फ्लैशबैक में वो पल याद आ रहे थे जब उसकी बहन की जिद ने उसे ऐसे लड़के से शादी करने पर मजबूर किया जो उससे 3 साल छोटा था। फ्लैशबैक, 10 दिन पहले, राजस्थान, सिरोही, सहगल विला, सुबह का वक्त, 8 बजे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना दीदी आपके साथ अब कहीं भी। जब मैंने कहा मुझे वेदांत ही पसंद है, तो आप क्यों उस बिगड़ैल रुहान को मेरे गले बांधना चाहती हैं? आपको ज्यादा चिंता है तो आप कर लो उससे शादी। लगभग 20 साल की लड़की अपने कमरे में बेड पर बैठी लगभग रोने वाली आवाज में ये सब अपने सामने खड़ी अपनी बहन से कह रही थी। उस लड़की ने इस वक्त एक व्हाइट क्रॉप टॉप और नीचे ब्लू डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। बालों की हाफ पोनी बना रखी थी। दिखने में खूबसूरत थी, पर फिलहाल उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। दीदी, अब चुप क्यों हो गई आप? पहले तो बहुत बोल रही थी, विवाह कर ले शादी रुहान से, वो अच्छा लड़का है। जब बात आप पर आई तो आप चुप हो गई। विवाह ने फिर से झल्लाते हुए अपने सामने खड़ी लड़की से कहा। उसके सामने इस वक्त व्हाइट अनारकली ड्रेस पहने अनाही सहगल खड़ी थी। सहगल परिवार की बड़ी बेटी, उम्र 25 साल, खूबसूरत इतनी, चेहरे से जैसे नूर झड़ रहा था, पर उसके चेहरे पर परेशानी के अलावा दूसरा भाव कम ही आता है। आज इन दोनों बहनों को देखने गुजरात के निमानी परिवार के लड़के आए थे, पर हमारी विहा को छोटा बेटा नहीं बल्कि बड़ा बेटा वेदांत पसंद आ गया, जो निमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का CEO भी था। दिखने भी बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह। दूसरा, वो बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड वाला लड़का था। वहीं उसका छोटा भाई आज सिरोही नहीं आया था। उसके बावजूद उसके चर्चे इतने थे कि सबको पता था उसका दिन और रात दोनों क्लब में गुजरती हैं। अनाही ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, पापा से बात करते हैं, तो रोना बंद कर बाहर चल। विहा की आंखों में चमक आ गई और वो अनाही के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। बाहर हॉल में एक दंपत्ति जोड़ा बैठा था। दोनों के हाथ में चाय के मिट्टी वाले कप थे। अनाही के पिता राधे श्याम सहगल और माँ काशी सहगल। अनाही ने उनके सामने जाते हुए कहा, पापा, छोटी को रोहान जी पसंद नहीं आए हैं। ये सुनकर राधे श्याम ने लंबी सांस भरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। बाकी वो लोग काफी नामी घर से थे, उसे कहना एक बार और सोच ले। पीछे विहा सर झुकाए खड़ी थी। अनाही ने फिर से हल्की कांपती आवाज में कहा, उसे उनका बड़ा बेटा वेदांत निमानी पसंद है। वो चाहती है उसकी शादी बड़े बेटे से हो जाए और मेरी छोटे से। ये सुनने भर से राधे श्याम के हाथ में पड़ा कप छूटकर फर्श पर गिर गया और वो गुस्से में सोफे से उठते हुए अनाही के पास आते हुए बोले, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। इतना बोलकर उन्होंने विहा को मारने के लिए हाथ उठाया तो विहा अनाही के पीछे छुप गई। अनाही ने राधे श्याम का हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं है पापा, वेदांत की उम्र भी ज्यादा नहीं है, वो बस विहा से 7 साल बड़े हैं और इतना गैप तो चलता है। राधे श्याम ने गुस्से से उबलते हुए कहा, और तुम्हारा क्या, रुहान तुमसे 3 साल छोटा है। अनाही ने पलकें झुकाते हुए कहा, अगर विहा खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काशी ने अनाही के पास आते हुए कहा, बेटा, हम रिश्तेदारों को क्या कहेंगे, कैसे छोटी बेटी ने दूसरे घर के बड़े बेटे से शादी कर ली। काशी और राधे श्याम दोनों अब गुस्से से विहा को घूर रहे थे, जो अनाही के पीछे दुबकी हुई खड़ी थी। जैसे उसके मुंह में जबान ना हो, उसकी जबान सिर्फ अनाही के सामने खुलती है। फ्लैशबैक एंड। पंडित जी की आवाज से अनाही का ध्यान टूटा, जो उसे खड़े होने को कह रहे थे। अनाही को इस वक्त भी लहंगे की वजह से जल्दी उठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो रोहान को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि जल्दी उठ जाए। तभी रोहान ने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से कहा, माना कि मैं छोटा हूँ, लेकिन आपको संभाल सकता हूँ। आज तक बिना अप्रोच के किसी की मदद नहीं की, ये पहली बार है। रोहान के लहजे से लग रहा था कि उसे अनाही की मदद करना पसंद नहीं आ रहा, फिर भी वो कर रहा था। अनाही ने हल्के से मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अगले ही पल रुहान ने उसे खींचकर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। अनाही बुरी तरह थक चुकी थी। विहा का लहंगा भी वैसे तो भारी था, लेकिन वो शादी के एक्साइटमेंट में इतनी डूबी हुई थी कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बार बार घूंघट के पीछे से अपने हैंडसम पति का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों जोड़ों ने परिवार का आशीर्वाद लिया। यहाँ निमानी परिवार की बड़ी बहू निवेदिता निमानी, जो उनकी सास थी, और उनकी देवरानी राधिका निमानी मौजूद थीं। काशी और राधे श्याम ने भी अपनी बेटियों को आखिरी बार गले लगाया। विहा रोते हुए बोली, मम्मी पापा, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो माफ करना। काशी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंख से थोड़ा काजल निकालकर विहा के कान के पीछे लगाया और कहा, परेशान तो तुमने बहुत किया है, अब अपने ससुराल वालों को करना। कुछ देर बाद 4 गाड़ियां माउंट आबू से गुजरात के लिए रवाना हो गईं। काशी और राधे श्याम ने भी सिरोही जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक की। उन्होंने रात रिसॉर्ट में ही रुकने का इंतजाम किया था, ताकि सुबह जल्दी सिरोही रवाना हो सके। सुबह 5 बजे निमानी हाउस गुजरात।
4 गाड़ियां निमानी हाउस के सामने रुकीं। अनाही पूरे रास्ते सो रही थी, जिससे उसकी थकान काफी हद तक उतर चुकी थी। वहीं विहा ने पूरा रास्ता रोते हुए बिताया था, जिसके कारण अब वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। वेदांत उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से संभालकर बाहर निकाल रहा था। दूसरी ओर रोहान और अनाही के बीच 2 गज की दूरी थी, जैसे दोनों दुश्मन देशों के सिपाही हों।